نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. درس و تدریس کے آداب میں سے تیسرے باب کا ہم ساتواں پوائنٹ دیکھیں گے اور ٹاپک یہی ہے کہ ایک طالب علم کس طریقے سے علم زیادہ حاصل کر سکتا ہے اور کیا چیزیں ہیں کہ اگر اس کی زندگی میں آ جائیں تو پھر اس کے بعد وہ ایک متوازن زندگی گزار سکتا ہے اور اپنے وقت کو بہترین استعمال کرے. ابھی تک پیچھے ہم نے جو دیکھا تو وہ کھانے پینے میں وقت کا ضائع کرنا, ہر وقت پیٹ کے بھرے رہنے کا ہونا, یعنی ہر وقت پیٹ کا بھرا ہونا, صبر اور قناعت نہ ہونا, یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو علم کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں. ہم پیج نمبر 79 سے ساتواں پوائنٹ دیکھیں گے. شرعی رخصتوں کی رعایت رکھتے ہوئے پرہیزگاری پر کاربند رہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ شرعی رخصتیں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر بہت ساری چیزوں کو پیش کیا, ہم سب کے فائدے کی چیزیں تھیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ کچھ خاص مواقع اور حالات کے وقت ان کو ایگزیم بھی کر دیا, اور کچھ چیزوں کے بارے میں تو خاموشی اختیار کی گئی. تو شرعی رخصتیں کیا ہیں کہ جن کے بارے میں یا تو خاموشی ہے یا پھر کسی خاص موقع کے وقت کسی خاص موقع پہ ان پہ عمل کرنا فرض نہیں قرار دیا گیا. بہتر تو ہو سکتا ہے لیکن فرض نہیں. کچھ اور بھی چیزیں ہیں اس میں, پہلے ہم اس پیراگراف کو پڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ اس پہ مزید بات کریں گے. تمام امور میں تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرے. کھانے پینے لباس اور رہائش میں خود بھی حلال کا اہتمام کرے اور اپنے اہل عیال کو بھی اسی کی طرف راغب کرے تاکہ اس کا قلب علم کے نور سے مستنیر, مستنیر نور سے ہی ہے یعنی منور جیسے لفظ ہوتا ہے اسی طرح, یعنی اس کے اندر اس کے دل کے اندر روشنی آ جائے اور اس کے نفع کے قابل بن سکے, تاکہ اس کا قلب علم کے نور سے مستنیر اور اس کے نفع کے قابل ہو سکے. اپنے لیے شرعی مباحات پر قناعت اور کفایت نہ کرے. شرعی مباحات کیا ہیں؟ مباح چیزیں, یعنی شرن جن چیزوں کو مباح کیا گیا جائز ہیں, ہاں بس یہ نہ کرو یہ کرو, بلکہ اس سے بھڑکے جس قدر ممکن ہو تقوی اور پرہیزگاری پر عمل پیرا رہے اور با امر ضرورت ہی شرعی رخصتوں کو اختیار کرے. کچھ مشکل باتیں جو اس میں تھیں, پہلی چیز تمام امور, امور امر سے ہے کاموں, تمام کاموں میں کیا کرے؟ تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرے. تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرنا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے کہ دو طرح کی زندگیاں ہوتی ہیں, ایک فتوے والی اور ایک تقوی والی. فتوے والی زندگی کیا ہوتی ہے کہ بس انسان فتاواز لے کے جائز اور ناجائز کی حد بندی کر لے, جس چیز کو جائز قرار دے دیا گیا وہ تو کر لے اور ناجائز ہے اس کو چھوڑ دے, یہ فتوے والی زندگی ہوتی ہے. لیکن تقوی والی زندگی کیا ہوتی ہے کہ ناجائز کے شبہے میں بعض جائز چیزوں کو بھی چھوڑ دے. مشتبہات, سورۃ آل عمران کی پہلے ہی رکوع میں ذکر آتا ہے قرآن پاک کی کچھ آیتیں جو شبہ ڈال دیتی ہیں جس کا عمل سے کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا. اسی طرح انسان کی زندگی میں کچھ وقت ایسے آتے ہیں کہ کچھ چیزیں اس کو اجازت تو ہوتی ہیں کہ نہ کرے یا کر لے, لیکن تقوی کا تقاضا ہوتا ہے کہ پھر اس کو بھی کرے. اسلام نے پابند نہیں کیا لیکن کرے گا تو زیادہ فائدہ ہوگا اس کو, اس کو تقوی والی زندگی کہتے ہیں. دوسروں کے ساتھ جب انسان معاملہ کرے, ان کو سیکھے سکھائے, ان کو سکھائے, ان سے بات کرے تو فتوے کی بات بتا دے کہ دیکھیں لیسٹ ریکوائرمنٹ یہ ہے, آپ اس سے بڑھ کے جتنا مرضی کر لیں, لیکن جب اپنے آپ کو دیکھے تو پھر تقوی والا فیصلہ دے. مثال دے دوں گی, کوئی ایک نیا شخص دین میں آتا ہے جس نے ساری زندگی روزہ نہیں رکھا, تو آپ اس سے کیا ٹیچ کریں گے کہ سال میں کم از کم 29 या 30 रोज़े तुमने रखने हैं, ये फ़र्ज़ है। अगर तुम ये भी रख लोगे ना तो बहुत है। ये है फतवा। लेकिन अगर आप अपने आप को देखें तो आप उस 30 पे नहीं रहेंगे, फिर आप कोशिश करके नवाफिल का भी इख्तमाम करेंगे। आप मुहर्रम के 2 रोज़े भी रख सकेंगे। आप अपने आप को ज़िलहज के 9 दिनों के रोज़ों के ऊपर भी तैयार करें, जुमेरात और पीर के रोज़े के लिए कायल करें। तो ये है तकवा का रास्ता। उम्मीद है कि बात वाज़े हो गई होगी। यानी सिर्फ़ आखिरी सिरे पे खड़े होकर दीन में नहीं जाना, बल्कि बीच में जाए, आगे बढ़ के ले, खाने पीने और इस रिहाइश में हलाल का इख्तमाम करे, घर वालों को भी इसकी रग़बत दिलाए। क्यों? रिस्क हलाल का एक अल्टीमेट फ़ायदा ये होता है कि दिल में इल्म के लिए जगह बनती है। अगर कभी इल्म का शौक़ उठता हुआ दिखे ना, तो ज़रूर देखिए कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी पेट में चली गई जो दुरुस्त नहीं थी, कम से कम शुबे वाली तो थी ही। तो लिहाजा रिस्क हलाल का इख्तमाम इंसान अपने आप को इल्म की खातिर तैयार करने के लिए भी करेगा और अल्लाह का हुक्म समझते हुए भी करेगा। इसका दिल इल्म के नूर से मुनव्वर हो जाए, चमकने लगे, रोशन हो। नैयर उर्दू में एक लफ्ज़ सुना होगा आपने, और इसके नफ़े के काबिल बने। बहुत सारे लोग इल्म हासिल करते हैं लेकिन उस इल्म से नफ़ा ना खुद हासिल कर पाते हैं ना दूसरों को उससे नफ़ा दे सकते हैं। उसकी वजह बाज़ दफ़ा इन में से कोई एक चीज़ भी हो सकती है जिसका ज़िक्र किया गया। अपने लिए शरई मुबाहात पर कनात और किफ़ायत ना करें। अब समझ आ गया होगा शरई मुबाहात क्या है। मसलन बस 30 रोज़े रखना, ये मुबाह है, यानी लीस्ट ये तो करना ही पड़ेगा। नहीं, बल्कि जिस कदर मुमकिन हो तकवा और परहेज़कारी पर अमल रहे। ये परहेज़ क्या होती है? उर्दू में तकवा को परहेज़गारी और मुत्तकी को परहेज़गार कहते हैं। किस चीज़ से परहेज़ करता है ज़रा सोचिए। परहेज़, पीछे हटना, पीछे रहने वाला, गार, यानी उन चीज़ों से अपने आप को पीछे रखने वाला जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने पसंद नहीं किया। खाने का परहेज़ करते हैं ना, खट्टे ठंडे मीठे का परहेज़ करते हैं ना, डॉक्टर कहता है। डॉक्टर के कहने पे कुछ चीज़ों को हम छोड़ते हैं, तो अल्लाह के कहने पे बहुत सारी चीज़ों को क्यों नहीं छोड़ सकते? और उसने तो बहुत सारी चीज़ों का कहा भी नहीं। चंद चीज़ें हैं गिनती की, कुछ रवैये, कुछ मामलात, कुछ खाने की चीज़ें, कुछ पहनने की चीज़ें, कुछ देखने की चीज़ें, कुछ सुनने की चीज़ें, चंद हैं, उंगलियों पे गिनी जा सकती हैं। पूरी शरीयत में किन चीज़ों से रोका गया? अगर इंसान इन पे चलता है तो इंशाल्लाह उसका सीना इल्म के लिए खुलता है और बा अमरे ज़रूरत ही शरई रुख्सतों को इख्तियार करे। यानी ज़रूरत के वक्त बस रुख्सत को इख्तियार करे। मसलन तबीयत ऐसी हो गई कि इंसान नफिल नहीं पढ़ सकता, तो ठीक है, कोई बात नहीं, फ़र्ज़ पढ़ो, फ़र्ज़ नहीं छोड़ोगे। अपने असलाफ़ को अमल का नमूना बनाए। असलाफ़ सलफ़ की जमा है, पीछे गुजरे हुए लोग, यानी वो लोग जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब के ज़माने में थे। हम उनको असलाफ क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमसे पीछे थे। इसका अपोज़िट अखलाफ होता है, हमसे बाद में आने वाले, जनरेशन्स बाद वाले और ये पीछे वाले। इनके अमल को नमूना क्यों बनाए? इसलिए कि जितना आप शम्मा के करीब जाते हैं ना, उतनी रोशनी बढ़ती है। शम्मा या बल्ब या ट्यूबलाइट से आप दूर होते जाएंगे तो रोशनी कम होती है। इसी तरह वो लोग जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब के ज़माने में थे, वो भी इल्म और अमल में ज़्यादा खूबसूरत नमूना थे आज की नस्बत। अंधेरे दूर हो गए, हाँ चिराग से चिराग जलते रहते, इल्म से इल्म आगे बढ़ता रहे तो फिर ये अंधेरे रोशनियों में बदल जाते हैं। लेकिन अगर इन रोशनियों को अंधेरों में बदल दिया जाए और चिराग जलाने की बजाय इंसान अपने आप को ऐसी चीज़ में ले आए कि जिसकी वजह से हर घर में अंधेरा हो, तो फिर अमल बदलने लगते हैं। लेकिन अगर चिराग से चिराग जलता रहेगा तो वो दिए जो असलाफ़ ने जलाए थे वो आज भी जलते रहेंगे। लेकिन जब وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ علم سے دور ہوتے ہیں تو پھر عمل میں کمی آتی ہے. تو لہٰذا ایک اچھا طالب علم کون ہے؟ جو اپنے سے پیچھے والے لوگوں کے عمل کو نمونہ بنائے, جو بہت سے امور میں جواز کا فتویٰ دینے کے باوجود خود تقویٰ کے اعلیٰ مرتبے پر کاربند رہتے تھے. ہمارے اسلاف کی کیا عادت تھی کہ وہ صرف فتوے نہیں دیتے تھے بلکہ تقویٰ کے اعلیٰ معیار پہ قائم رہتے تھے. اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی لائق اسوہ ہیں, یعنی جن کی تقلید کی جائے یا جن کے ایک نقش قدم پہ چلا جائے. اور وہ کیا کہ آپ نے ایک دن سرے راہ ایک کھجور پڑی ہوئی دیکھی تو اس ڈر سے کہ یہ کہیں صدقے کی نہ ہو تناول نہیں فرمائی, یعنی کھایا نہیں. نیز اہل علم لوگوں کے لیے مقتدا اور پیشوا ہیں جن کی لوگ پیروی کرتے ہیں, لیکن اگر وہ خود پرہیزگاری پر عمل پیرا نہ ہوں تو پھر کون ہوگا؟ البتہ ضرورت کے وقت شریعت کی طرف سے دی گئی رخصتوں سے استفادہ کر لینا مناسب ہے, یعنی اس سے فائدہ اٹھانا مناسب ہے تاکہ عام لوگ ان مسائل میں ان کی اقتدا کر سکیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ جیسے اس کی عظیمتوں کو بجا لایا جائے اسی طرح اس کی دی ہوئی رخصتوں سے بھی فائدہ اٹھایا جائے. تو دو باتیں ہم نے اس میں دیکھ لیں کہ پچھلے لوگوں کے اسوے کو نمونہ بنانا ہے, خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل, پھر صحابہ کرام, پھر تابعین, پھر تبع تابعین, کیونکہ یہ وہ لوگ تھے کہ شک والی چیز منہ میں بھی نہیں ڈالتے تھے, نظریں بھی نہیں اٹھتی تھیں ان کی اس چیز کی طرف جس کے بارے میں شبہ ہوتا تھا کہ یہ ہمیں گناہ میں نہ مبتلا کر دے. اور دوسری چیز ہم نے دیکھی کہ جو علم والے ہوتے ہیں وہ کسی بھی معاشرے کے چمکتے ہوئے ستارے ہوتے ہیں. لوگ ان کے پاس آئیں نہ آئیں, ان کو بلائیں نہ بلائیں, لیکن دور سے ان کو دیکھتے ضرور ہیں اور وہ ان کی خاموش اتباع بھی کر رہے ہوتے ہیں. اگر ایسے لوگوں کے عمل کے اندر کمی ہوگی تو باقی لوگ تو اس سے بہت ہی پیچھے ہوں گے اور ایک جواز لے لیں گے کہ ہاں یہ تو علم والے لوگ ہیں, ان کا تو یہ معاملہ ہوگا, یہ تو ایسے کرتے ہیں تو پھر ہم تو اس سے پیچھے بھی رہیں. جیسے بعض دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کہی جائے تو لوگ کہتے ہیں ہاں جی وہ تو اللہ کے نبی ہیں نا, ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے, وہ اللہ کے نبی ہیں لیکن انسان بھی تو تھے اور وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل بھی تو تھے. تو اس لیے انسان کو اس چیز کی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں میں سے بہترین طریقہ اپنے لیے پسند کرے, اور لیسٹ جو بہت لائٹ سا وے آف لیونگ ہے یا جو آسان بات ہے وہ دوسروں کو بتائے. ہاں ایک دفعہ جب انسان راستے پہ چل پڑتا ہے, ایک سیڑھی پہ چلا, پھر ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو آہستہ آہستہ وہ خود ہی مل جائیں گی. دیکھیے تقویٰ گرو کرتا ہے, جیسے آپ ایک چھوٹے سے پودے کو لگاتے ہیں نا, پھر وہ بڑھتا ہے, پھر درخت بنتا ہے, عملوں کا بھی درخت بنتا ہے. انسان جتنا اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس کرتا ہے, جتنا ایک نیکی کرتا ہے, اتنی اس کو دوسری نیکی کرنے کا شوق لگ جاتا ہے. پہلے دن اگر آپ پورا انڈیل دیں نا کسی کے اوپر علم تو وہ نہیں لے پائے گا. پھر ایک وقت آتا ہے کہ بندہ اگل ہی دیتا ہے. تو سلو اینڈ اسٹڈی, اپنے آپ کو رخصت نہ دیں لیکن لوگوں کو رخصتیں دیں. مثلا دیکھیے کہ بعض دفعہ ہمارے اندر کچھ عادات ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں علم سے روک دیتی ہیں. مثال دیتی ہوں, چلیے صبح و شام کی دعاؤں کا پڑھنا. کتنے لوگ ہیں جو صبح و شام کی دعائیں پڑھتے ہیں؟ اگر صبح و شام کی دعائیں آپ نہیں پڑھتے نا, تو پھر میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ علم کی محفل میں فوکس نہیں ہوتے. چیک کر لیجیے اپنے آپ کو, کیونکہ اس وقت جو بھی بات ہوگی یہ علم کے حاصل کرنے کے ناطے سے ہوگی. میرے پاس سیٹرڈے اسکول کلاسز ایک ہوتی ہیں, بچے آتے ہیں ٹینیجرس. اب جب وہ آتے ہیں پہلے تجوید ہوتی ہے, دعائیں ہوتی ہیں, پھر میں ان کو وہاں پوچھتی ہوں کہ اچھا یہ بتائیں کہ آپ میں سے کس نے فجر نہیں پڑھی. پورے ویک کا پوچھتی ہوں کتنی مس ہوئیں یا میک اپ کیں یا واٹ ایور, اور میں خاموشی سے کہتی ہوں کہ جس نے نماز نہیں پڑھی ہوئی وہ اٹھے اور نماز پڑھ کے آئے. یقین کریں جب بچے اٹھتے ہیں تو مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے, مجھے حیرت ہوتی ہے ان کے حال پہ. میں کہتی ہوں آپ فجر پڑھے بغیر اللہ کا قرآن پڑھنے آ گئے, یہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. اور میں دیکھتی ہوں یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو پھر مس فٹ فیل کرتے ہیں نا اپنے آپ کو. نماز نہ پڑھے انسان اور قرآن پڑھے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ सुबह शाम की दुआएं पढ़ना शैतान के चुंगल से इंसान को आज़ाद करा देता है। तो अपने लिए कोई अमल की बात सोची आपने, ये भी बहुत अच्छी बात है, बावजू रहना, ये चीज़ भी इंसान के इल्म हासिल करने में काफ़ी मददगार साबित होती है। आप ऐसे सोचें ना कि एक शैतान है, वो आपके पीछे लगा हुआ है, आपने अपने आप को उससे बचाना है। हर ख़राब आदत से वो दोस्त बनेगा, उसको खुशी होगी, और हर अच्छी आदत से वो आपसे नाराज़ होगा। तो बस ये एक मुकाबला है, इसीलिए तो इसको नफ्स के साथ जिहाद करना कहते हैं ना। वो जिहाद असल में शैतान के ख़िलाफ़ ही होता है, वो आपको गलत काम करवाना चाहता है और आप अच्छा काम करेंगे। बाज़ दफ़ा इंसान इल्म की मजलिस में फ़ोकस नहीं होता, उसकी वजह कुछ नजासत भी हो सकती है लगी हुई, बाज़ दफ़ा अपने जो गैर ज़रूरी बाल है उनकी सफाई भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें इंसान को फिर फोकस करने में मदद देती हैं। जब नमाज का वक्त है तो फौरन पढ़ लें, देखे कि नमाज थोड़ी लेट पढ़ेंगे तो हो तो जाएगी। फतवा तो कहता है कि लेट भी पढ़ लो, हो जाएगी, छोड़ो नहीं, लेकिन तकवा क्या कहता है कि अव्वल वक्त में पढ़ो। इस तरह की टिप्स अपने सामने रखेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अपने गौर करना है कि मैंने अपने अंदर कौन सी एक ऐसी आदत लानी है जो अभी तक नहीं थी, जिसमें मुझे गुनाह तो नहीं हो रहा लेकिन मैं नेकियों से महरूम हो रही हूँ। देखिए नेकियों की कदर क़यामत के दिन आएगी। आज तो हम बड़ी बड़ी नेकियाँ ऐसे ही छोड़ देते हैं ना, क्या ज़रूरत है, फ़र्ज़ तो नहीं ना, कर लेंगे, यानी बड़े ख़ुद कफ़ील समझते हैं अपने आप को नेकियों के मामले में। लेकिन हकीकत क्या है कि हम बहुत ही खाली हाथ हैं। एक एक नेकी को क़यामत के दिन इंसान तरसेगा। हमें दर्जे बुलंद करवाने हैं ना अपने, दूसरों से ऊपर उठ के काम करेंगे तभी तो दर्जे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। चलिए अगली भी एक चीज़ देख लेते हैं ताकि हमारे पास ज़्यादा चीज़ें हों सोचने के लिए। आठवीं बात जिससे एक इल्म वाला इल्म से फ़ायदा हासिल कर सकता है वो क्या है, जो चीज़ें निसियान, कुन ज़हनी और कमज़ोरी का सबब हों इनको कम इस्तेमाल करें। मुतालिम यानी स्टूडेंट को चाहिए कि खाने की जो चीज़ें ज़हनी फतूर क्या होता है, जिससे मेंटल डिस्टॉर्ट जिसको आप कहते हैं ना, सोचें परेशान इधर उधर जा रही हैं और आपको पता ही नहीं अब कर क्या रहे हैं, किधर जा रहे हैं, जो इसकी कमज़ोरी का सबब बनती हों इनको कम कर दें। जैसे तुर्श सेब, खट्टे सेब जो होते हैं ना, वो लोबिया खाना और सिरका पीना, इसी तरह वो चीज़ें जो बलगम में इजाफ़ा करती हों, यानी जिससे गले में रेशा आता है, जिससे जहन कमज़ोर और बदन भारी होता हो इज्तनाब करे, जैसे दूध और मछली वग़ैरह ज़्यादा इस्तेमाल करना। अल्लाह ताला ने जिन अशिया को जहन की उम्दगी का ज़रिया बनाया है इसको इस्तेमाल करे, जैसे लोबान और मस्तगी, दवा आदत के मुताबिक चबाना। ये कोई जड़ी बूटियां हैं, लोबान और जड़ी बूटियां नहीं, ये जो जैसे हमारे गरम मसाले होते हैं ना, ये उसी तरह की कोई हकीमों की ज़ुबान में ये कोई चीज़ें हैं। और सुबह सवेरे किशमिश खाना और जुलाब यानी शरबत पीना। नीस मुतालिम को चाहिए कि जो चीज़ें मर्ज़े निसियान, अच्छा निसियान क्या होता है ये तो बताया ही नहीं आपको, निसियान कुन ज़हनी को कहते हैं, यानी आपकी मेमोरी का शार्प ना होना। बाज़ दफ़ा ये शिकवा करते हुए दिखते हैं तालिबे इल्म के, हमें याद नहीं होता, बस तो बेचारे रोते हैं, याद करते रहते हैं करते रहते हैं फिर याद ही नहीं होता एंड पे। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि देखें अल्लाह ताला को आप पे कितना प्यार आएगा, आप इतनी कोशिश करती हैं। पिछले वीक भी किसी स्टूडेंट का फ़ोन आया और बेचारी रोने के करीब थी कि बस मेरा जहन अच्छा नहीं, मैं इतना याद करती हूँ मुझे कुछ याद नहीं हो रहा। मैंने कहा पहले तो ये जुमला बदलें कि कुछ नहीं मिल रहा, ये नाशुक्री का जुमला है जो शैतान मुँह पर लाता है, बहुत कुछ मिलता है लेकिन अभी जो आप चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा, उस लेवल पे नहीं आ रहा, जो हो रहा है कर लें, जो नहीं होता उसको पीछे डाल दें, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला आसानी करवा देगा। लेकिन कुछ ना होने की वजह से सब कुछ तो नहीं छोड़ना ना, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान की मेमोरी को ख़राब करती हैं, इससे बचना चाहिए। मसलन इनसे ख़ास तौर पर बचे, जैसे चूहे का जूठा खाना, कब्रों पर लगे हुए कतबों को पढ़ना, ऊँटों की कतार में घुसना और सर से जुएं निकाल कर फेंकना वगैरह, क्योंकि तजुर्बात से साबित हुआ कैसे काम निस्यान का ज़रिया बनते हैं। मेरा तो कोई इस पर इल्म नहीं है, सच कहूँगी। इन्होंने लिखा है तो कोई बात होगी, लेकिन अपने लिए हम इसमें से अमल की ये बात ले लेते हैं कि किस तरीके से हम वो खाने जो माइंड को बिल्कुल डल कर दें। मसलन आज के दौर की प्रैक्टिकल थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जिससे मेमोरी ख़राब होती है, क्योंकि मुझे ये तो पता है कि जो चीज़ें फैटनिंग होती हैं ना, वो आपको लेज़ी कर देती हैं। मसलन जैसे चॉकलेट्स, फैटी फूड, ऑयली थिंग्स ज़्यादा खाना, मीट का ज़्यादा इस्तेमाल, जंक फूड, हाई शुगर फूड, जो चीनी वाली चीज़ खाते ही बाज़ लोगों को नींद आने लगती है, फ्राइड फूड, जब आप पराठा खाते हैं तो उसके बाद आप बैठ नहीं सकते, कार्बोहाइड्रेट्स का ज़्यादा लेना, मेडिसन टैबलेट्स, ये तो बहुत ही अजीब चीज़ है कि जो दवाइयाँ कसरत से इस्तेमाल करते हैं लोग, यानी आजकल तो ताकत के लिए भी लोग दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। मुझे हैरत होती है कि फूड खाओ तुम उसकी जगह भी विटामिंस खाते हो। स्वीट एंड फ्राइड थिंग्स, देखिए आसान सी ज़िंदगी गुजारें, नेचुरल डाइट पे रहें, नेचुरली काम करें, जितना खाएं उसको डाइजेस्ट कर लें, मेहनत का काम कर लें, ओवर ईटिंग ना करें, सब्जियां लें, फ्रेश खाएं, कम पकाएं, कम गलाएं, मीट खाएं तो उसको भून भून के उसका बिल्कुल कचूमर ही ना निकाल दें कि वो लगे ही ना कि ये कभी बेचारा सुरख रंग का था, इतना काला कर दें। बहुत ज़्यादा जैसे बेकरी स्टफ़ है उससे परहेज़ करें, क्योंकि जो चीज़ खाते हैं जाती तो अंदर ही है ना, अब स्टमक में उसकी तहें लग रही हैं, आप कैसे अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं। तो लिहाजा इस सबक में से जो अब बातें काबिले गौर हैं हम सब की लिए, जिस पे हमने गौर करना है, एक तो ये है कि कोई एक ऐसी आदत डालनी है आपने कि जिससे आप अजीमत के रास्ते पर चलें, फतवे से उठ के तकवा पे जाना है। सब के लिए इंशाल्लाह ताला ये एक्टिविटी होगी, हम एक अगली क्लास से पहले इस पे डिस्कशन कर लेंगे कि कोई एक ऐसी आदत अपने अंदर लाएं और उसके लिए अपने आप को आप तैयार करें। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने खाने पीने के ऊपर कंट्रोल करना है। तो दूसरी बात ये है कि बाकी वक्त भाग भाग के काम करें, जब यहाँ से उठें फिर उठ जाएँ बस, फिर ऐसे भागें काम करें जैसे जहाँ भी थोड़ी सी अगर करीब भी जाना है तो वॉक करके जाएं, और सुबह के वक्त में फजर के बाद अब सैर कर सकते हैं, ताज़ा हवा में निकलना ज़रूरी है, 5 वक्त नमाज़ पढ़ें पूरी, ज़रा सुन्नतों के साथ अपनी खुशी से नवाफिल भी पढ़ लें। बहुत ज़्यादा जब हम आर्टिफिशियल माहौल में रहते हैं तो हर वक्त एसी है, एसी नहीं है तो हीट है, ये भी चीज़ें स्किन को भी ख़राब करती हैं और इंसान लेज़ी हो जाता है। हमारी बॉडी के अंदर फितरी तौर पे गर्म करने और ठंडा करने का इंतज़ाम मौजूद है, उसको यूज़ करें, कम से कम हीट खोलें, कम से कम एसी चलाएं। यहाँ पे रुकते हैं अब, इसके लिए आप लोग ज़रूर कमिटमेंट करें कोई अपने लिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के लिए हम फिर उसके डिस्कशन के लिए रेडी होंगे। अल्लाह ताला आपके लिए इल्म का ये सफ़र आसान करे और बेहतरीन तरीके से आपको लेके जाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।